यूरोपीय लोगों के ऑस्ट्रेलिया में बसने के समय से अब तक विदेशी निवेश ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा रहा है। चीन जैसे देशों से आने वाला विदेशी निवेश कई बार अर्थव्यवस्था के माइनिंग और कृषि जैसे हिस्सों को ताकत प्रदान करता है, लेकिन 2014 में लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए सर्वे में आधे से अधिक ऑस्ट्रेलियन मानते हैं कि सरकार चीन से बहुत ज्यादा निवेश होने दे रही है। हाल ही में सिडनी में एक लेटर बॉक्स कैंपेन में भी घरों के बढ़ते दामों के लिए चीन के निवेशकों को जिम्मेदार ठहराया गया। आज हम ये ही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चीन का निवेश ऑस्ट्रेलिया के लिए फायदेमंद है या नहीं। रॉबर्ट कोचार ने न्यू साउथ वेल्स की कंगारू घाटी में पीढ़ियों से खेती करते रहे हैं। उन्होंने सारी उम्र सिर्फ पशुपालन किया है। वे स्थानीय किसानों द्वारा अपनी खेती योग्य जमीन चीनी निवेशकों को बेचने से चिंतित हैं।
Look, we don't mind the Chinese coming here, but we don't want them buying up our land. We would prefer to produce the product they're wanting and sell it to them at a fair price.
वे कहते हैं कि सुपरमार्केट्स ने दूध के दाम कम कर रखे हैं, जिससे किसान कठिनाई में हैं। इसीलिए सर्वाइव करने के लिए उन्हें अपने फार्म विदेशी निवेशकों को बेचने पड़ रहे हैं।
It's very hard to say no under those circumstances, but only time will tell if China becomes substantial enough in Australia in the production of dairy products, it will have a detrimental effect on the rest of the dairying community.
लोवी इंस्टीट्यूट के इंटरनेशनल इकोनॉमी प्रोग्राम के डायरेक्टर डॉक्टर लियोन बर्कलमेंस कहते हैं कि फार्मिंग में होने वाले विदेशी निवेश से ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय हितों को खतरा नहीं है।
I don't think that this is a terribly big problem either. The extent of foreign investment in agricultural land is pretty small. It's not terribly large. If we look at the amount of investment that goes into agriculture as opposed to the amount of foreign investment that goes to everything else, it's something very small. It's of the order of a percent or two. It's not very large.
वे ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के सर्वे को रेफर करते हुए बताते हैं कि करीब 98% फार्म बिजनेस पूरी तरह से ऑस्ट्रेलियन लोगों के मालिकाना हक वाला है। विदेशी निवेश सिर्फ 10% फार्म लैंड में हुआ है, यानी 90% खेती योग्य भूमि के मालिक ऑस्ट्रेलियन हैं। और अब तो द फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिव्यू बोर्ड ने अपनी पॉलिसीज भी सख्त कर दी हैं। बोर्ड अब $15 मिलियन से अधिक के खेती योग्य भूमि के सौदे की जांच भी करेगा। डॉक्टर बर्कलमेंस कहते हैं कि इस समय ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी निवेश बेहद उपयोगी है।
So we need people to come invest in Australia. That investment can take a couple of forms. It can take portfolio investment, where people buy things like shares, or they actually lend money to us, or it can take direct investment. It can take the forms of direct investment, where people are purchasing actual businesses, or building factories, or purchasing mines and things like that.
चीन के अलावा भी कई देश ऑस्ट्रेलिया में निवेश करते हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में निवेश करने में यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, जापान और नीदरलैंड सबसे ऊपर हैं। सिंगापुर और चीन दोनों 5वें नंबर पर हैं। दोनों देश ऑस्ट्रेलिया में कुल विदेशी निवेश में 4% की हिस्सेदारी रखते हैं। डॉक्टर बर्कलमेंस कहते हैं कि अमेरिका अभी भी 24% के साथ सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है।
So the United States continues to be a very important source of funds. China has been increasing its weight. So they don't have a terribly large stock of foreign investment in Australia, but the flow into Australia is increasing with pace. So I think it's something like now 10 or 15% of investment in Australia comes from the Chinese.
तथ्य तो ये है कि चीन का निवेश घट रहा है। केपीएमजी और यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी की 2015 की स्टडी के अनुसार चीन का निवेश 2014 की तुलना में 9% कम हुआ है। अर्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरून शेपर्ड कहते हैं कि हम चीन के निवेश का स्वागत करते हैं।
The increase of supply of housing which foreign investment can provide, and it's been shown that foreign investment in the development of new housing in Australia, particularly at the lower and mid price points, is extremely important. So foreign investment in this country is being seen, and we know is increasing supply of housing, which is in critical shortage, as we all know.
Australia में घरों की कीमत बढ़ रही हैं। द कोर लॉजिक आरपी डाटा के अनुसार घर की कीमतें ऑस्ट्रेलिया में करीब 8% और सिडनी में 12% से ज्यादा पिछले साल भर में बढ़ी हैं। शी शेपर्ड के अनुसार चीनी निवेशकों को इसके लिए दोष देना ओवर रिएक्शन की तरह है।
There's obviously an increase in overseas and particularly Chinese investment in this country, like there is in other parts of the world. I don't think we should be overly concerned at this point that overseas or Chinese in particular investment in this market is distorting our market or taking away opportunity from local players. I think that while it's increasing, it's still only a small proportion of the total investment in this country.
Australia ki sarkar videshi niveshakon ko sirf naye makanon ko khareedne ki ijazat deti hai. हालांकि टेम्पररी रेजिडेंस को रहने के लिए एक घर खरीदने की अनुमति है, लेकिन वीजा समाप्त होने पर उन्हें वो मकान बेचना होता है। कैमरून शेपर्ड कहते हैं कि हमें अपनी सोच बदलनी होगी।
I think we should be focusing on how we increase the supply of new housing to the market in general rather than trying to limit the number of foreign buyers into our market. If there was a significant increase in dwelling supply in the country, then the issue of how much foreign investment is taking up demand wouldn't be such an issue. So I think the focus should be more on increasing supply rather than limiting overseas investors.
The Foreign Investment Review Board सभी विदेशी निवेशकों से एक एडमिनिस्ट्रेशन फी लेने का प्रस्ताव कर रहा है, जिससे उन सभी निवेशों की ठीक से जांच की जा सके। कैमरून शेपर्ड इसे विदेशी निवेश रोकने वाला कदम बताते हैं।
And we agree with the fact that enforcement of the foreign investment rules in this country should be strengthened. However, we have an issue with the imposition of new charges, which we believe will serve to drive investment away from Australian property markets and move foreign investment into other markets around the world, which we believe will seek to weaken our economy, particularly in a time when the mining boom in Australia is coming off, and we should be relying more on housing and dwelling investment to increase economic growth and job creation and also housing supply.
Board ke aankdon ke anusar चीनी निवेशकों के सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्लान अप्रूव हुए। डॉक्टर लियोन बर्कलमैन कहते हैं कि चीन को सबसे बड़े निवेशक के रूप में अमेरिका की जगह लेने में अभी बहुत वक्त लगेगा।
Australia needs foreign investment. We run a current account deficit and we are experienced with handling foreign investment. We have been doing this ever since we started trading. This is something that we need. We're experienced with handling it, and I don't hold many grave concerns.